हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। वही देव तो अब झलक के मुंह से अपने लिए चपड़गंजू सुनकर चौंक गया था। साथ साथ गुस्से से झलक की ओर देखने लगा था और सोच रहा था कि बस एक बार ये 2 महीने गुजर जाए। उसके बाद उसे पता था कि उसका बॉस इस झलक की जान ही ले लेगा। अब वो सोच रहा था कि इस झलक की जान तो वो खुद ही लेगा। ये लड़की मुझे चपड़गंजू बुलाती है, अब देखो मैं तुम्हारी किस तरह से जान लूंगा। वेल, अब झलक ने सिद्धार्थ की ओर देखकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ इसका पता 2 महीने बाद चलेगा, और हाँ, अगर मैं बदकिस्मती से तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली होंगी ना, तो मैं उसी वक्त अबॉर्शन करवा लूंगी। उसके बाद मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। अब जैसे ही झलक ने 2 टूक ये सारी बातें कहकर अपनी बात खत्म की, अब तो सिद्धार्थ खुराना के चेहरे पर होठों पर एक मुस्कान आ गई थी, और वो झलक की ओर देखकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? तुम एक चालाक, धोखेबाज और पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हो, और मैं जानता हूँ कि तुम एक्टिंग भी कितनी कमाल की करती हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बल्कि प्रेग्नेंट होने पर मुझे ब्लैकमेल करोगी। अब झलक ने सिद्धार्थ की बात सुनकर अपने माथे पर हाथ मार लिया था, और वो सिद्धार्थ की ओर लाचारी से देखकर बोली, तो आखिरकार तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे, मैं तुम्हें साफ शब्दों में कह चुकी हूँ, मेरा तुम में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे, मैं तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती हूँ, समझे तुम? अब तुम्हें मानो या ना मानो, ये अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अब तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसा बोलते हुए झलक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वही सिद्धार्थ के कानों में झलक की कही हुई बातें गूंजने लगी थी कि वो उसे पसंद नहीं करती है। ना जाने क्यों ये बात सिद्धार्थ खुराना को बहुत ज्यादा हर्ट कर गई थी, और जल्द ही अब कार रुक गई थी। झलक ने कार से निकलकर बड़ी ही विनम्र शब्दों में सिद्धार्थ खुराना की ओर देखकर कहा, गुड बाय, और उसके साथ ही वो दरवाजे से बाहर निकल गई। और झलक के जाने के बाद सिद्धार्थ ने अपने हाथ सीधे हाथ की उंगलियों से अपने माथे को पूरी तरह से रगड़ना शुरू कर दिया था, और वो समझ चुका था कि ये लड़की जरूर नाटक कर रही है। उसके सामने ये बोल रही है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जरूर ये उसके बच्चे का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल करेगी, और फिर उसकी भोली भाली दादी को बहला फुसलाकर उससे शादी करेगी, और ये खुराना परिवार की बहू बनने का सपना देख रही है। कहीं ना कहीं ये बात खुराना के दिमाग में बैठ चुकी थी। अगले ही पल अपने माथे को जोरों से रगड़ने के बाद वो देव की ओर देखकर बोला, इस लड़की का फोन टैप करवाओ और 24 घंटे इसके ऊपर किसी की नज़र रखवाओ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर ये लड़की अब किसी न किसी आदमी से मिलने की कोशिश करेगी, और उसके साथ प्रेग्नेंट होकर उसे बच्चे को मेरा नाम देना चाहेंगी। और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये लड़की अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ लग रहा था कि अगर झलक प्रेग्नेंट नहीं हुई तो कभी किसी और आदमी के साथ रिश्ता बनाकर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, और फिर उसके बाद उसके पैसों के लिए उसका पीछा करेंगी, कि उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। वेल, वही दूसरी ओर झलक ने अपना कुछ जरूरी सामान अपने रेंट वाले घर से लिया और सीधा वो वहां चली गई थी जहां पर इस वक्त उसकी माँ और पिता रह रहे थे। अपने माँ और भाई से मिलकर झलक बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कुछ देर तक वो अपनी माँ के गले लगे रोती रहीं। उसकी माँ भी उससे पूछ रही थी कि आखिरकार तुम कहाँ थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अचानक से 2 आदमी हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे लिए कोई अलग घर खरीदा है, और उन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट कर दिया। मैंने उनसे कितना कहा कि मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो, लेकिन वो नहीं माने। तब झलक ने जल्दी ही एक बहाना बनाते हुए कहा, वाह माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और नाइट क्लब वालों की तरफ से ही मुझे ये 1 BHK के घर रहने के लिए मिला है और अब हमें इसका किराया भी देना नहीं पड़ेगा। और आप फिकर मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी पापा के सारे इलाज करवा लूँगी और उन्हें लेकर हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए अपने घर वापस चले जाएंगे। जिस छोटे शहर से वो आए थे उस शहर में वो वापस चले जाएंगे। अब झलक की बात सुनकर उसकी माँ मिसेस नेहा शर्मा ने थोड़ी राहत की सांस ली थी और उसे गले से लगाकर कहा, पता नहीं कितने बदनसीब हैं तुम्हारे वो असली माँ बाप जिन्होंने तुम जैसे हीरे जैसी बेटी को घर से बाहर फेंकने की कोशिश की। पर सच मुझे तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो और ये जानते हुए भी कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं। तब झलक ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया था और उनकी आंखों में आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये आपसे किसने कहा कि आप मेरी असली माँ नहीं हैं? आप ही मेरी असली माँ हैं और आप दोनों ही मेरे असली माता पिता हैं और ये मेरा छोटा भाई है और आप लोगों की जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगी। कहीं ना कहीं झलक की बातों में आत्मविश्वास नजर आ रहा था। बस वो जल्द से जल्द अपने पिता को ठीक करके कुछ ही महीना के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाना चाहती थी। तब झलक भाई उसके पास आया और बोला, दीदी आपको पता है मेरा यही एक ट्यूशन वाले के पास एडमिशन हो गया है। अपने भाई के बात सुनकर झलक की आंखें नम हो गई थी और उसने अपने भाई के माथे को चूम लिया था और गिल्टी टोन में बोली, बस कुछ दिनों की और बात है, फिर उसके बाद हम अपने शहर वापस लौट जाएंगे और तू एक बार फिर से अपना स्कूल कंटिन्यू करेगा, मैं तुझे वादा करती हूँ। अब जैसे उसने अपने भाई को प्रॉमिस किया, उसके भाई ने बेफिक्री से बोला, झलक दीदी डोंट वरी, मैं खुद को संभाल सकता हूँ और आपको इस तरह से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ समझता हूँ, आफ्टर ऑल मैं बड़ा हो रहा हूँ झलक दीदी। ऐसा बोलकर झलक के भाई ने झलक को थोड़ा सा बेटर फील करवाया था और झलक रोते रोते भी हंसती थी। वेल, तभी झलक की माँ स्नेहा शर्मा थोड़ा सा आगे आई और चिंता जताते हुए बोली, बेटा मैं कब से तुमसे एक बात करना चाह रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। तब झलक अपनी माँ की ओर देखकर कंफ्यूज्ड होकर बोली, ऐसी कौन सी बात है माँ, बताइए क्या बात है। स्नेहा जी फिक्र जताते हुए बोली, बेटा तुम तो जानती हो पता नहीं तुम्हारे पिता कब कोमा से बाहर आएंगे, उनकी बीमारी से तो हम लड़ सकते थे लेकिन उस कार एक्सीडेंट के बाद जब से वो कोमा में गए हैं मुझे उनकी बहुत चिंता सी लगी रहती है, कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, ना जाने कब तक हमें सोच शहर में और रहना पड़ेगा। बेटा तुम तो जानती हो मेरी एक दूर की बहन है जो कि एक हॉस्टल चलाती है, तो वहाँ पर मैंने तुम्हारे भाई की बात कर दी है और हम उसके सारा खर्चा उसको वहाँ भेज किया करेंगे। बेटा आखिरकार कब तक ये बच्चा यहाँ ट्यूशन के सहारे पढ़ेगा और फिर मेरे साथ बाकी का समय अस्पताल में गुजारेगा, इसका ध्यान रखने के चक्कर में मैं तेरे पिता का भी ध्यान सही से नहीं रख पाती हूँ, तो क्यों ना हम रोहन को तब तक तुम्हारी मासी के पास भेज दे। अब जैसे ही झलक की माँ ने ये कहा, झलक को कहीं ना कहीं उनकी बात तो बिल्कुल ठीक नजर आती है, वैसे भी रोहन की पढ़ाई का भी लॉस हो रहा था, इस तरह से वो ट्यूशन के सहारे भला कितना सीख सकता था। तब झलक ने अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए माँ, और रही बात रोहन की तो रोहन क्या तुम रह लोगे ना हमारे बिना, पक्का तुम सर्वाइव कर लोगे ना, और मासी तो वहाँ होगी ही। तब रोहन जल्दी से बोला, अरे दीदी मैं तो कब से स्कूल जाना चाहता हूँ, आप जानती है ना मुझे स्कूल जाना कितना ज्यादा पसंद है और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा।
ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर जाऊँगा और फिर जब मुझे मम्मा और दीदी की याद आया करेंगी मैं फोन कर लिया करूँगा और दीदी तो मुझसे मिलने आया ही करेगी ना।